شادی کا مطلب خاندان، خاندان کی تشکیل، خاندان کی تشکیل لمحات اور اتفاق نہیں سمجھتا۔
جناب سمسامی، میں ایک گھر کا نوکر ہوں، منظور ہے۔ میرے ماں باپ کا پتہ نہیں، یہ بھی منظور ہے۔ مگر خود کو تو جانتا ہوں، اپنی جوانی، اپنے جذبات، اپنی امنگیں اور اپنے مستقبل کو تو جانتا ہوں، اپنی ترقی، اپنی چاہت کے جذبات، عشق کے جذبات کو تو جانتا ہوں۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹیڑھے میڑھے راستے، تو میں آخر تک سمجھ جاتا ہوں۔ میری نیت معلوم ہے، خاص کر ابھی کی جناب شائستہ کی صورتحال بھی معلوم ہے۔ جناب سمسامی، جناب شائستہ پر 8 ارب کا قرضہ ہے، باقی بچی دولت سے کئی گنا زیادہ قرضہ ہے۔ پھر اگر یہ سوچا جائے کہ گھر کا ایک نوکر اس فراق میں ہے کہ موقع کا فائدہ اٹھا کر کھا پی کر لے کر نکل جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رویا کے سلسلے میں میری چاہت بھلی نیت سے ہے اور نیک بھی ہے۔
شائستہ تمہارا جینا دوبھر کر دے گا میرے بچے۔
میں تیار ہوں جناب سمسامی۔
تم کیا سمجھتے ہو کہ میری بیٹی سڑک چھاپ ہے، جو کہ ایک سڑک چھاپ کی عاشق ہو چکی ہے؟
سڑک چھاپ؟ تو تم کو بھی یقین ہو چکا ہے کہ کاوے سڑک چھاپ ہے؟
اب بس بھی کرو سمسامی، اس بات کو کتنا کھینچ رہے ہو؟ کافی نہیں ہے کیا؟ کافی نہیں ہے کہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور میری بچی کا ہاتھ مانگا، وہ بھی کون؟ مہری کا بیٹا۔ مہری جو کہ خود ہمارے خاندان کے سینے میں ایک ناسور تھی۔ یہ کاوے اور اس کی شادی کا معاملہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ میں یہاں تک کہ اس بارے میں رویا سے بھی وضاحت نہیں چاہتا ہوں۔
اس سے وضاحت نہیں چاہتے کیونکہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے؟
احمد رضا کا پتہ چل گیا ہے۔ اٹھو اٹھو عزیزم، اٹھو تمہاری قربان۔
احمد رضا بابائی ہے؟
ہاں احمد رضا بابائی ہے۔
मोहतरमा, मेरे शोहर पर क्या मुसीबत नाजिल हुई है? अभी उनकी कैसी हालत है?
हौसला रखो बेटी।
आईसीयू का क्या मतलब? इस कदर तार, इसका क्या मतलब?
इन सारे सवालों का जवाब तुम्हारे शोहर के डॉक्टर के पास है, डॉक्टर फिदाई। सुबह तक सब्र करना होगा कि डॉक्टर आ जाए।
अस्पताल की रिपोर्ट बता रही है कि यह तीसरा दिन है कि अहमद रजा बाबाई अस्पताल में भर्ती है। आखिर तीन दिन बाद हमें खबर क्यों मिल रही है? कहां गड़बड़ हुई जिसकी वजह से हमें देर में खबर मिली? अगर कर्जदार जान गए कि अहमद रजा मिल गया है, अलबत्ता उनको अस्पताल का पता नहीं चलना चाहिए। वो लोग शाइस्ता के घर पर हमला कर देंगे और उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे। बस शाइस्ता के वकील को खबर कर दो।
जनाब, ये फैक्स की कॉपी है जो चार दिन पहले भेजी गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि चार दिन पहले एक कुएं से एक आदमी को निकालकर यहाँ अस्पताल में भर्ती किया गया है। यह नामालूम आदमी हो सकता है कि अहमद रजा बाबा ही हो।
तो फिर अभी यह खबर मुझे क्यों मिल रही है?
फैक्स कॉपी भी पढ़ने लायक नहीं थी, फाइलिंग करने वाले ने भी ध्यान ना देते हुए फाइल में लगा दिया।
हवालात को इसीलिए बनाया गया है?
उसकी कोई गलती नहीं थी जनाब, फैक्स कॉपी पढ़ने में नहीं आ रही थी।
फैक्स की कॉपी पढ़ने में नहीं आ रही है? जाहिर है, ऐसा हो जाता है। फैक्स मशीन को जबान नहीं, समझ नहीं। चार अदद आईसी, बटन और फोन का तार है, इसकी सरजनिश नहीं की जा सकती। लेकिन वो अफसर जो पता नहीं लगाता, पूछताछ नहीं करता कि ये फैक्स कैसा है, किसका है, उसकी तो सरजनिश की जा सकती है ना? क्यों?
जी जनाब।
वहां किसने ढूंढा?
एक चरवाहे ने, उसने ढूंढा और नजदीकी पुलिस चौकी में खबर कर दी।
तुम जाओ उस पुलिस चौकी और उस चरवाहे को ढूंढो। दोपहर से पहले सारी रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, समझे?
आप कहाँ जा रहे हैं?
मैं अपने शौहर की हालत से बाखबर होना चाहती हूँ। वो यहाँ क्यों है? इस तरह से क्यों पड़ा है? क्या ये ज्यादा मुतालिबा है?
नहीं, ज्यादा नहीं है। होश में आने का कितना एहतमाल है?
होश में आने का उतना ही इम्कान है जितना ना आने का। बहरहाल उनके कोमा में जाने की दो वजह हो सकती हैं, कुएं में गिरना या गिरने से पहले सख्त किस्म की चोट, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह। बहरहाल उनके सर पर बहुत गहरी चोट लगी।
कुएं में गिरने से पहले मुमकिन है कोई एक्सीडेंट हुआ हो?
एहतमाल हो सकता है। यह एहतमाल बीमार के लिए यानी अच्छे होने की उम्मीद 50% ही होती है।
और ना होने की?
दिमागी मौत।
हेलो।
ऐसी कोई वजह है जो इस वक्त तुम अपने कमरे में नहीं हो?
नहीं।
तो फिर आधे घंटे के अंदर घर पर होना चाहिए।
जी अच्छा। सलाम
सलाम
सुब्बा खैर रोया जान आ जाओ। काश कोई हमारी तरफ भी देखता।
सलाम
सलाम। क्या हुआ?
अहमद रजा बाबाई का पता चल गया है।
पांच मिनट का वक्त मांगा था, अब पूरा हो गया है, आप बाहर जाइए।
जनाब डॉक्टर वारिस्ता आईसीयू में। जनाब डॉक्टर वारिस्ता आईसीयू में। जनाब डॉक्टर मुरादी आईसीयू।
खानम आओ चले।
क्या हुआ? सब ठीक हो गया ना?
बहुत अच्छा। अच्छा बहुत जबरदस्त।
आधा घंटे बाद अखबार के स्टॉल के पास मिलो। खुदा हाफिज। अब जबकि अहमद रजा बाबाई का पता चल गया है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जनाब शाइस्ता?
शहरियों के जज्बात के बारे में खोज खबर रखना आपके कानूनी फरीजे में शामिल नहीं होना चाहिए।
हाँ नहीं है, मगर इस मुद्दत के दौरान हम दोनों की एक ही आज़ू उम्मीद थी, अहमद रजा का सामने आना।
अहमद रजा और उन पैसों का मिलना। मेरा पैसा मिला?
नहीं नहीं मिला है, मगर बाबाई मिल गया है। एक धोखेबाज हजार जगह भटकता फिरता है और फिर 8 अरब तुमान लेकर निकल जाता है। वो जाता है ताकि वापस ना आए, मगर अभी लौट आया है, मौत के मुंह से बच कर आ गया है। या तो निहायत बेवकूफ है, या ढीला ढाला लापरवाह, या एक या और भी है। 4 दिन हो रहे हैं कि एक कुएं से निकाला जाता है, ये आपकी जिम्मेदारी को बढ़ा नहीं देता? शायद जरूरत पड़े कि हम दोनों एक बार फिर साथ बैठकर दोबारा हालात का जायजा लें।
इंस्पेक्टर, जब जायजा लेने का वक्त आए तो मुझे बुला भेजो, मेरा पता तो आपके पास होगा ही।
फिर मिलते हैं।
जब मिला तो ना तो उसके पास पैसा था और ना ही शिनाख्ती कार्ड। अब जबकि अहमद रजा का पता लग गया है लेकिन पैसा अभी भी गायब है। क्या हुआ, मुंह फुलाए बैठे हो? अभी सूरत हाल बुरी नहीं है, अहमद रजा का पता चल चुका है।
एक गोश्त का बिस्तर पर पड़ा टुकड़ा किस काम आएगा?
अदालती माहिरीन तुम्हारे दिवालिया होने का जायजा लेने में मसरूफ हैं। सुना?
हाँ सुना।
अचानक देखोगे कि पलक झपकते ही सारे हालात ठीक होते जा रहे हैं। उसके होश में आने का इम्कान है। जब वो होश में आ जाएगा तो हालात में बहुत फर्क आ जाएगा।
क्या ये बातें यकीनी हैं? इस बारे में डॉक्टर क्या कहता है कि वो होश में आ जाएगा?
नहीं, लेकिन ये इम्कान जरूर है। क्यों? अंदर जाओ, ठंड न लग जाए। चलो सब फिक्र छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मालिक।
जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाते हैं।
तुमको तो ये मालूम है ना कि तुम्हारे डैड को यह कतई पसंद नहीं कि उनके काम में कोई दखल दे। जब वो चाहे तब दखल देना, ठीक है?
हाँ ठीक है।
कावे,
मुझे नफरत है इस बात से कि कोई मेरे घर के दरवाजे पर नजरें गड़ाए खड़ा रहे। कावे, तो मेरी कुछ इखलाकी खसूसियात से वाकिफ होगे ना? क्यों?
हाँ जानता हूँ।
तो फिर जानते हो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता कि जिस घर में मेरे बीवी बच्चे रहते हैं।
मैं किसी और काम के लिए आया हूँ।
किस लिए? अपने चेहरे से इस चश्मे को हटाकर बात नहीं कर सकते क्या? जब मैं किसी से बात करता हूँ और उसकी आंखों पर काला चश्मा देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है।
हवा बहुत गर्म हो चुकी है।
हाँ थोड़ी गर्म है।
कल रात से अब तक के हंगामे को देखा? पता नहीं कैसे हंगामा हो गया। मैंने एक पसंदीदा और रस्म के मुताबिक बात की है, शादी। मैं और तुम जब बच्चे थे तो फ्लोर आंटी के घर के आंगन में, मुझे याद है रमजान का महीना था, पता नहीं किसी ने तुम्हारी मां नाहिद खानम को कह दिया था कि बुखार की बीमारी फैली हुई है और ये कि जो कोई भी दूध पिएगा उसे बुखार हो जाएगा और वो मर जाएगा। तुम्हें और रोया खानम को दूध पीना मना हो गया था और तुम तो खीर के बहुत शौकीन थे। नरगिस जान तो याद होगी ना तुम्हें? नरगिस जान ने अफतारी के लिए खीर बना रखा था और समोवर पर रखा था ताकि अफतारी तक गर्म रहे, और जब अफतार का टाइम हुआ तो नरगिस जान ने देखा कि खीर तो है ही नहीं। मैं कमरे में सोया हुआ था, वो मेरे पास आई और देखा कि खीर का बर्तन तो खाली पड़ा है, मेरे मुंह पर भी खीर लगी हुई थी। उन्होंने मुझे उठाया और मुझसे झगड़ने लगी कि अवतार की पूरी खीर क्यों खा ली। मैं एकदम हक्का बक्का और हैरान परेशान खड़ा था। मैंने उनसे कहा कि मैंने खीर नहीं खाई है। वाकई में मैंने खीर नहीं खाई थी। मैं अपने कमरे में सोया था, बस वैसे ही बदनाम हो गया। खीर खाई भी नहीं और सजा मुझे मिली। बाबा खान, मेरा जेब खर्च भी बंद कर दिया और दो हफ्ते तक मुझे पैसा भी नहीं दिया, याद है? खीर तुमने खाई और बदनाम मुझे कर दिया,
याद है? मैंने भी तो तुमको बिना पैसों और जेब खर्च के परेशान नहीं होने दिया है।
हाँ, मगर मैंने बिल्कुल कबूल नहीं किया।
मैं हमेशा तुम्हारी इस इज्जत नफ्स की कद्र करता था।
अब मैं और मेरी इज्जत नफ्स दोनों जवान हो चुके हैं। सब कुछ बचपन से जवानी में तब्दील हो चुका है। बाबक, मैं अगर मैं बुरा आदमी हूं, अगर नकारा हूं, लाउबाली हूं, अगर हलाल हराम नहीं पहचानता तो मुझे बताओ, कहो कि नहीं, मेरे मुंह पर मारो और मुझे घर से निकाल दो। अपने डैड की तरह कहो कि दफा हो जाओ। अगर ऐसा नहीं हूं तो मैं यहां ये कहने आया था कि मेरे वास्ते बरादरी का हक अदा करो। अगर मैं सही हूं तो मेरी मदद करो। अगर मेरा मकसद सही है तो मेरी मदद करो। तुम्हारी इजाजत से रोया खानम भी राजी है। कोशिश करो कि तुम्हारे डैड भी राजी हो जाए। उनकी मर्जी हासिल करने में मदद करो मेरी।
अभी इन सब बातों का बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि क्योंकि हमारे डैड की मुश्किलें इन सब चीजों से कहीं ज्यादा और बड़ी हैं, खासतौर पर ऐसी हालत में जबकि अहमद रजा का सुराग मिल गया है।
सलाम।
सलाम अजीजम, तुम ठीक हो?
क्या अनुष कहाँ है?
बाथरूम में।
तुमसे थोड़ी बात करनी है, उसके बाद जाऊंगा अस्पताल। अस्पताल जाऊंगा क्योंकि एक जवान के बारे में डॉक्टर से बात करनी है जो कि कोमा में है। जाकर पता लगाना है कि यह जवान होश में आएगा या नहीं। उस जवान का नाम अहमद रजा बाबाई है।
क्या खबर है?
पूना के बारे में? कल रात वो नहीं आई। उसके मोबाइल पर बहुत फोन किया, पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर बाद में मोबाइल बंद कर दिया।
जरूर कोई बात हुई है, वरना उसको मालूम है कि आज उसके वालिद की फातिया खानी है।
जा रही हूँ खोजस्ता के पास अस्पताल। कल रात से अब तक वहाँ है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए थोड़ा कपड़े और सामान लेकर। खुदा हाफिज।
हाशिम खान बुखार में भट्टी की तरह तप रही है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ।
डॉक्टर
नाहिद आईसीयू तो छोड़ो, कॉरिडोर में भी बैठने नहीं दिया।
ये कानून है, क्या करोगी? डॉक्टर क्या कह रहे हैं?
बदन पर इस कदर तार लगे हुए हैं कि उनके अंदर से बदन का दुबलापन और जर्दी का ही पस पता चलता है। पूना की क्या खबर है?
क्यों, कल रात वो घर नहीं आई। अभी जब यहाँ आ रही थी तो उसकी गाड़ी दरवाजे पर देखी, उसका हाथ जख्मी था, चेहरा पीला पड़ा हुआ था। बता रही थी बहन के घर से आई है। क्या हुआ जो तुमने पूछा, कुछ हुआ क्या?
नहीं जानती, जब जान जाऊंगी तब बात करेंगे।
उस शाइस्ता को नीचे देखा?
उसने फिर से शुरू कर दिया, मेरे आसाब पर हावी होना, मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा होना।
कहां?
मोहतरमा, बीमार को दाखिल कराने लाया हूं, कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी?
अब क्या करूं?
हाँ,
माफ करें मोहतरमा, अहमद रजा बाबाई के डॉक्टर का नाम क्या है? मोहतरमा, माजरत चाहता हूं, अहमद रजा बाबाई के मुआलिज डॉक्टर का नाम क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
जरा सब्र कीजिए जनाब।
ठीक है, मैंने सब्र किया। अहमद रजा बाबाई के डॉक्टर का नाम क्या है? वही धोखेबाज जो आईसीयू में भर्ती है।
फिदाई, डॉक्टर फिदाई, अभी वो अपने वार्ड में।
शुक्रिया।
क्या चाहते हैं जनाब? क्या हर जगह तमाशा करते फिर रहे हैं कि अहमद रजा वही धोखेबाज है, इसका क्या मतलब है?
तो क्या मैंने झूठ कहा है?
मुझे झूठ और सच से मतलब नहीं है। आप हर घड़ी मेरी नजरों के सामने क्यों आते हैं? मेरे आसपास अगर कानून हो तो मुझे एतराज नहीं, पर मुझे आप पर एतराज है। आपकी मौजूदगी पर एतराज है क्योंकि आपके मुंह में लगाम नहीं है। मुझे एतराज
मेरी आंखों के सामने, चूंकि मेरी आंखों के सामने मेरी जिंदगी है, चूंकि मेरा जो कुछ था सब कुछ मेरी आंखों के सामने बर्बाद हो चुका है। एक मर्तबा तो मेरे चंगुल से निकल गया, दोबारा भागने का मौका नहीं दूंगा। दुनिया के सभी लोग जान जाएं कि तुम्हारा शौहर कैसा आदमी है और उसने क्या किया, जान जाएं कि उसकी फोटो अखबारों में छप चुकी है, जान जाएं कि 500 घरानों को 100 बार बना के भाग गया।
बस, आपकी ऊंची आवाज मुझे डराती है, आपकी धमकी मेरे पैरों को लड़जाती है। बस एक बार चीख पुकार कर ले और बता दे कि मेरा शौहर धोखेबाज है और फिर यहां मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा, मत आइएगा। अपना हक चाहते हो ठीक है, मगर कोर्ट में, पर यहां इस अस्पताल में उस लोहे के ठंडे बिस्तर पर मेरा शौहर लेटा है, मेरा हक, मेरे बच्चे का बाप, मेरे कलेजे को मत तड़पाइए, ऐसा मत करिए।
जनाब डॉक्टर फिदाई।
अभी आप उसे पैसे की तरह देखते हैं, ना कि इंसान की तरह, है ना?
डॉक्टर आप पैसों की बात कर रहे हैं जैसे ये पैसे उसके बाप के हों। ये पैसा मेरा है, मेरी सारी जमा पूंजी।
देखिए जनाब, इससे पहले भी मैंने इस तरह के बीमार देखे। कभी सेहत याबी हो जाती है और कभी नहीं होती। ये खुद बीमार की हालत और उसकी नफ्सियात से मरबूत है। वो जवान है, इस मरहले से गुजर जाने का इम्कान है मगर बहुत कम। आप यही पूछना चाहते थे ना? क्यों? मैं नहीं जानता आपकी परेशानी क्या है। आपकी हालत नहीं समझ पा रहा हूं क्योंकि अभी तक मुझसे मेरे पैसे नहीं गए। मगर उस औरत की हालत को, उसके खौफ को, उसके सदमे को समझ सकता हूं। आप भी समझने की कोशिश कीजिए।
डॉक्टर, अगर तुम्हारी गाड़ी पर मैं एक लकीर डाल दूं तो डंडा लेकर 50 सड़कों का चक्कर लगाओगे और दुनिया से पूछते हुए मुझ तक खसारा वसूलने पहुंच जाओगे।
मैं तुमसे 8 अरब तूमान की बात कर रहा हूं।
8 अरब, समझे?
Mm-hmm.